ओम शांति। एक सूक्ष्म बात पे चर्चा करेंगे आज की मुरली से। पहुंचो सवेरे, याद करो पहली लाइन क्या थी, कौन किसको देख रहे थे आज, याद करो। बाप बच्चों को नहीं, कुछ और। अधिकारी बच्चों को, बाबा अपने अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। लौकिक में स्वभावग्रस्त में रहने वाले आपको भी ये संकल्प रहता है, हमारी प्रॉपर्टी के बच्चे मालिक हैं, और लौकिक में तो बहुत प्रॉपर्टी जमा करते हैं सब, और बच्चों को भी नशा रहता है ये सब हमारा है, रहता है। मुझे तो पता नहीं भाई, मैं इस जीवन में इन चीजों से अलग रहा हूँ, रहता है बच्चों को नशा या नहीं है? बच्चे आप तो है ना, आप बच्चियों को थोड़ा कम रहता है, भले ही मिलता भी हो लेकिन लड़कों को ज्यादा, दहेज में सब दे देते, इसलिए भारत में दहेज प्रथा थी ताकि हिस्सा उन्हें भी मिल जाए। अब सोचना है गहराई से, सूक्ष्मता से, बाबा की सारी संपत्ति के हम मालिक हैं। सोचें सभी, इसको अपने चिंतन में लाना है। बाबा ने तीन बातों पर आज ध्यान दिलाया, सुख शांति पवित्रता, तीन जो बहुत बड़े खजाने हैं, उनके हम मालिक हैं, अधिकारी हैं। और भी बहुत सारे खजाने हैं, देखो ज्ञान जो बाबा के पास वो सब हमारे पास, हालांकि बाबा ने कह दिया मैं तुम्हें सारा ज्ञान नहीं देता। आपने मुरली ध्यान से सुनी हो, साकार मुरली में ही आ गया, अपने ज्ञान का एक हिस्सा ही आपको देता हूं। तो लेकिन हम अपनी सूक्ष्म स्थिति के द्वारा उसके संपूर्ण ज्ञान को ग्रहण कर लेते हैं। ज्ञान पर भी हमारा अधिकार, और किस पर? पहली चीज है एक्चुअली तो वो, उसके प्यार पर भी हमारा अधिकार है। बच्चे जन्म लेते ही माँ बाप के प्यार के पात्र बन जाते हैं, लेकिन ये बात क्योंकि सूक्ष्म है, लेकिन हमें अपने अंदर उतार लेनी है उसका संपूर्ण प्यार। किसके लिए है बोलो, किसके लिए? हमारे लिए है। रोज वो हमें प्यार भरी दृष्टि भी देता है। देखो प्यार के लक्षण, आप देखो हम कुछ छोटी मोटी गलती कर दें, कुछ कार देता है, कोई बात नहीं ठीक करो, डांटता नहीं है। आप तो डांट भी देते होगे, बाबा कम डांटता है, कभी कभी आंख दिखाइए थोड़ी, नहीं तो नहीं। प्यार पर भी संपूर्ण अधिकार, प्यार में कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं हमें, बाबा के बोल में ही प्यार समाया होता है। कौन से बोल में? मीठे बच्चे, कई माताएं मुझे सुनाती हैं, अब हम लोग तो सुनते आ रहे मीठे बच्चे, कुछ खास असर नहीं पड़ता, पर माताएं कहती है जैसे ही मीठे बच्चे कहते हैं, और हम थ्रिलिंग कहते हैं इसको, रोमांचित हो जाते हैं, एकदम आनंद सा आ जाता है, भगवान हमें मीठे बच्चे कह रहा है। तो अधिकार है ना, उसकी शक्तियों पर भी, बहुत बड़ी चीज है ये, उसकी शक्तियों पर भी हमारा अधिकार है। अब पहले नंबर के बच्चों की आज बाबा ने निशानी बताई तीनों में, सुख शांति पवित्रता। पहले नंबर के विन करने वाले नंबर वन है। विन पहली चीज, सुख पर पूरा अधिकार, और बाबा ये चाहते हैं और हम भी चाहें कि इतना सुख हमें बाबा से मिल जाए, हम अपनी झोलियां उस सुख से इतनी ज्यादा भर लें कि कोई दुख हमें स्पर्श ही न कर पाए। दुख की लकीर जीवन में नहीं, हम सबको चेक करना है क्या हमने अपने को इतना शक्तिशाली ज्ञान स्वरूप बनाया है जो हमारे सुख को कोई हमसे छीन नहीं सकता या छिन जाता है। आप ये कह तो देंगे नहीं छिनता, पर छिनता है या नहीं? किसी की मृत्यु हो जाए सारा सुख चला जाता है। रोज के व्यवहार में देखें, कोई जरा सा उल्टा बोल दे क्या होता है सुख का? बोलो ना, आगे वालों से नहीं पूछता हूँ, पीछे वाले बताओ। कोई गलत बोल दे हमारे सुख का क्या हो जाता है? तुरंत होती है गड़बड़। तो हमारा सुख पावरफुल या दूसरों के बोल पावरफुल होना चाहिए? भगवान के द्वारा दिया हुआ खजाना पावरफुल। वो हमारा सुख हो तो थोड़ा कमजोर भी हो, सुखों के सागर से सुख मिला है वो कमजोर नहीं हो सकता। गड़बड़ कहाँ है? हम मनुष्यों के शब्दों को ज्यादा वैल्यू देते हैं। इसने ऐसा क्यों कहा, ये क्यों टेढ़ा कर देता है। बाबा क्यों पे बहुत बोला है, क्यों क्वेश्चन मार्क, खुद भी टेढ़ा, सबको टेढ़ा कर देता है। क्वेश्चन उठा टेढ़े हो गए, मूड टेढ़ा, स्थिति टेढ़ी। तो हम चेक करें हम दूसरों के शब्दों पर कितना ज्यादा ध्यान देते हैं। एक बार दो लोगों की लड़ाई हुई, एक ने दूसरे को मार दिया थप्पड़। जब उनका केस आया ऊपर वालों के पास तो उसने कहा इसने 18 मारे मुझे। मैंने पूछा गिन रहे थे क्या? जरूर वो गिन रहा था, इतना सीरियसली उस चीज को लिया। हम भी दूसरों के शब्दों को ज्यादा सीरियसली लेते हैं। इसने ये कहा, एक एक बात याद रहेगी, मुरली साथ साथ बोलेगी, लेकिन दूसरों के शब्द बोलो ज्यादा याद रहते हैं। अब हम इसको सीधा करना, ये उल्टा हो गया है। बाबा के शब्द ज्यादा याद रहे और दूसरों के शब्द भूलते जाएं फटाफट। और ये तब होता है जब हम अंदर से भरे हुए हों। देखो आप सभी कैमरे से फोटो लेते हैं, आजकल तो मोबाइल में कैमरा है ना, अगर ज्यादा हो गए फोटो तो क्या आने लगेगा, मेमोरी कार्ड फुल हो गया है, अब और फोटो नहीं लिए जाएंगे। हमने भी अपनी मेमोरी फुल कर दी है ना, फुल कर ली है। इसको फुल करें अब अच्छाइयों में, फुल कर ली है निगेटिविटी में तो ठीक हो जाएगा। तो हमारा सुख इतना हो जो आने वाले समय में हम सबको सुख बांट सकें। अब चेक कर लें सभी, कोई भी घटनाएं हमारे सुख को नष्ट करेंगी या हम सहज भाव में रहते हुए अपने सुख के भंडार से दुखी आत्माओं के दुख हर सकेंगे, सुखों के वाइब्रेशन फैलेंगे। इस मधुवन के लिए जो जो कुछ बाबा ने कहा हुआ है उसमें से एक बात यह भी है इस भूमि पर आते ही, यह है ना जहां हम बैठे हैं, बहुतों को इसकी वैल्यू ख्याल में नहीं रहती। ऐसा समय हो जाएगा, समय का चक्र ऐसा घूमेगा, अब इसमें 100 साल नहीं चाहिए, ये जल्दी आ रहा है। जो यहाँ आएगा चित शांत, दुख खत्म। जैसे तीसरा नेत्र बंद हो गया था वो वापस खुल जाएगा। दबाव, विनाश, उसमें होने वाली घटनाएं मनुष्य के तीसरे नेत्र को जैसे बंद कर देगी, यहाँ आते ही वो खुल जाएगा। तुम क्या सोच रहे हो, तुम तो ये हो। तो सुखों का भंडार बन जाएंगे ये स्थान, और हमें भी बनना है। तो बस ये चेक करेंगे, सारे दिन में कोई भी छोटी मोटी बात हमारे सुखों को हमसे छीने नहीं, न किसी के शब्द, न कोई घटनाएं। और हमारे सुख इंद्रिय सुख नहीं, भौतिक सुख नहीं, सांसारिक सुख नहीं। कैसा है ये सुख? अतिंद्रिय, इंद्रियों से परे का, आत्मिक स्वरूप का, योग युक्त होने का, मुरली का। मुरली बहुत सुख देती है या नहीं? बहुत सुख देती है मुरली। मिलता है सबको या नहीं? बहुत सुख है इसमें। इस सुख से रोज हम अपने को भरें। तीन चीजों पर विशेष ध्यान दें, सवेरे उठकर प्रभु मिलन का सुख, फिर उसके महावाक्यों का सुख, और फिर दूसरों को सुख देकर सुख। दूसरों को सुख देते चलेंगे, सुखी होते रहेंगे, और दूसरों के सुख छीनेंगे, आगे मैं नहीं बोलूंगा, आप सब जानते हैं, हमारे पहले ही छिन जाएंगे। तो हमें सुखों पर बहुत ध्यान देना है। सचमुच हम बहुत सुखी हो गए, हमारे मन से आवाज निकलती है कि बाबा आपको पाकर हम बहुत सुखी हो गए। बोलो, निकलती है आवाज? निकलती है ना? हाथ उठाएंगे जो बहुत सुखी हो गए? सच सच, बहुत अच्छा, सचमुच सुखी हो गए। यही तो बहुत बड़ा भाग्य है जो संगम युग पर भाग्य विधाता हम सब के लिए लेकर आए हैं। दूसरा, शांति। शांति के लिए बाबा ने एक कहावत भी याद दिलाई। हाँ, धरत, धरती पे भले गिर जाओ, मतलब सब कुछ नष्ट हो जाए, ऊपर से नीचे आ पड़ो, लेकिन धर्म, और धर्म कौन सा हमारा? शांति। शांति आत्मा का स्वधर्म है, ये हमारा धर्म हमसे छूटे नहीं। शांति, हमें अब शांति की तलाश ना हो, शांति के सागर की हम संतान। शांति हमें अधिकार में मिल गई है, मिल गई है, ले लेनी है इसको अधिकार से। बाबा ने हमारे स्वरूप की याद दिलाकर हमें शांत कर दिया। बाबा के सभी बच्चे शांत हुए। माया की अग्नि ने सबको अशांत किया था, जला दिया था। बाबा ने, मुरली आती है ना, अमृत, ज्ञान का अमृत छिड़क कर तुम सबको शीतल कर दिया। आ गई ये मुरली, पीछे आई है ये मुरली। ज्ञान अमृत छिड़क कर तुम्हारे विकारों में जलते हुए चित्त को बाबा ने शीतल कर दिया, शांत कर दिया। तो हमें फिर अपने से पूछना है, हमारी शांति स्थायी रहती है या परिस्थितियां, दूसरों का व्यवहार हमारी शांति को नष्ट कर देता है। शांति के लिए तो वैसे ही शब्द है, शक्ति, साइलेंस, पावर। साइलेंस में बहुत पावर है, लेकिन कैसी साइलेंस में? बोलो, उत्तर भाई देंगे, भाइयों का नंबर है। साइलेंस इज पावर, साइलेंस इज माइट, शक्ति है साइलेंस में। मुख से भी जब हम शांत रहते हैं तो भी हमारी शक्तियां बढ़ती हैं। अब तो हमारे यहां छूट गया है, नहीं तो मौन बहुत रहते थे, एक एक हफ्ता भी रहते थे, 40-40 दिन भी रहे, एक एक मास का तो बाबा की ओर से प्रोग्राम आया, मुझे याद है अब तक 73 जनवरी बाबा ने पूरा मौन एक मास और योग का चार्ट, और बाबा ने कहा था जिनका योग बहुत अच्छा होगा उन्हें बाबा प्राइज देंगे। तो एक तो मौन से हमारी शक्ति बढ़ती है, मौन से सुख भी बहुत मिलता है। रख कर देख ले आप, माताएं व्रत बहुत रखती थी, भाई लोगों से तो रहा नहीं जाता भूखा। बहन जी तो आज बता रही थी व्रत रखते थे, और फिर आप करते थे, भाई साहब करते थे। अच्छा, तो माताएं व्रत रखती थी और हम तो केवल देखते थे, छोटे थे, तो उस दिन घरों का माहौल कुछ अलग ही होता था। व्रत से भी माहौल में परिवर्तन होता है, और अगर कोई मौन व्रत रख ले तो बहुत परिवर्तन होगा। और उससे आगे कौन सी चीज है, मन का मौन, अर्थात मन को व्यर्थ से मुक्त, मन के संकल्प भी बहुत कम, व्यर्थ से मुक्त, व्यर्थ तो बहुत होता है, और मन में जो और बहुत सारे संकल्प चलते अननेसेसरी थॉट्स, उनसे भी मुक्त, कम हो जाएं सब, तो आत्मा को जो सुख मिलेगा और शांति की शक्ति बढ़ेगी वो बहुत ज्यादा होगी। इसके अनुभव करने हैं। अब ये मन को मौन कैसे रखा जा सकता है, कहने से तो नहीं होगा कि मन का मौन कर दो। बोलो, दो चार अभ्यास इसके लिए। अंतर्मुखता और स्वमान, क्या कहा, मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, स्वमान और ज्ञान का मनन चिंतन, बहुत अच्छी बात। स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना, और भाई बोलो, हाँ वो स्वदर्शन चक्र में आ गया, और बोलो, मुरली का चिंतन और आत्मिक स्थिति, साथ में पुण्य कर्म, कर्मों का तो गहरा संबंध मन से रहता है ना, पाप कर्म हो गए मन शांत रहेगा नहीं, पुण्य होते ही मन शांत रहने लगेगा। तो शरीरीपन, सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस, स्वमान की प्रैक्टिस, ज्ञान का मनन चिंतन, मुरली, मुरली पे बहुत ध्यान, इससे हमारा मन शांत होने लगेगा। सभी ये लक्ष्य बना ले, 500 रुपयों का अभ्यास, सभी लक्ष्य बनाए कि हमें 8 बजे तक, माताओं को सेवा में भी जाना होता है 5 बजे से ही, उससे पहले से ही, हमें सेवा करते हुए भी सवेरे 8 बजे तक अपने मन को सुखों में और शांति में भरपूर करना है। इतना हम सब कर सकते हैं कि सवेरे का ये टाइम हमारा मौन में बीते। थोड़ी बहुत बातचीत भी आपको करनी पड़ेगी सेवा में, लेकिन बहुत कम हो जाए। और जो बहुत सारे भाई बैठे हैं या बहनें हैं जिनकी सवेरे सेवा नहीं, वो ध्यान दें 8 बजे तक हम स्वयं को सुख से और शांति से भरपूर करें। कार्यों में रहते हुए, संसार में रहते हुए, अपने गृहस्थ में रहते हुए, हमें अपने को शांति से भरपूर करना है। कैसे, कार्यों में भी हैं सब, चाहे यहां सेवा में है वो भी कार्य है, सबकी प्रवृत्ति है अपनी अपनी, लौकिक घर भी है, किसको बिजनेस है, इस सब में रहते हुए भी चित्त को शांत रखना, कैसे संभव है? अब कुछ और प्रैक्टिस सुनाए? नहीं, वो तो प्रैक्टिस हो गई। अब आपका बिजनेस है, आपको लोगों से व्यवहार करना है, कहीं कुछ और होगा, कहीं कोई लोग तंग करने वाले भी आएंगे, कोई आपका बहुत सारा माल देखेंगे और खरीदेंगे कुछ नहीं, आप चिड़चिड़े हो सकते हैं, हो सकते हैं ना? माताएं जब खरीदने जाती हैं तो सोची जी देखेंगी, फिर कहेंगी कोई पसंद नहीं है, तो बेचारे व्यापारी अब उनको शांत कैसे रहना चाहिए? प्रतिज्ञा कर ले कि भाई हमारा काम ही ये है, ग्राहकों को सब कुछ दिखाना, लेना न लेना उनका काम है, शांत रहेगा चित्त। और बोलो, साक्षी दृष्टा ड्रामा। और घरों में आप अपने बच्चों के साथ रहते हैं, बच्चे कोई कैसे कोई कैसे, शुभ भावनाएं, आत्मिक दृष्टि, क्रोध ना आए। माताओं की समस्या ये है, औरों पे क्रोध नहीं आता, बच्चों पर बहुत आता है। अब गलती बच्चे करें और माताजी पुण्य करें, तो गलती किसकी बड़ी हुई? क्रोध आ गया, बच्चों ने गड़बड़ की। गड़बड़ तो करेंगे बच्चे, कभी पढ़ेंगे भी नहीं। माताओं की रोज शिकायत आती है, माताएं लाती हैं शिकायतें, बच्चा हमारा बहुत होशियार है पर पढ़ता नहीं है। एक तो अभी आए हमारे एजुकेशन वाले आए हुए ना, प्रोफेसर बहने कहा लड़का है दसवीं क्लास में, बहुत होशियार है पर पढ़ने पर ध्यान नहीं। अगर वो पढ़े तो 95% मार्क्स लाएगा, बिना पढ़े 85 ले आता है। अब देखो आप सोचो, तो माताओं को चिंता भी होती है, उस पर गुस्सा भी आता है। तो क्रोध को कंट्रोल में रखना ये बहुत जरूरी है बाबा के इस अधिकार को पाने के लिए। इसके लिए एक ही प्रैक्टिस करेंगे बस, ज्यादा नहीं, सवेरे उठ के कर लेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं 6 बजे तक, शाम को भी कर सकते हैं। क्रोध मेरा संस्कार नहीं है, मेरा संस्कार तो शांति है। हम रिजेक्ट करें इस क्रोध को, एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। अब हम अपने क्रोध को रिजेक्ट करें, क्रोध मेरा संस्कार है ही नहीं, मेरा संस्कार तो शांति है। तो जो मेरा हम कहेंगे वो बढ़ता चलेगा, जिसको रिजेक्ट करेंगे हटता चलेगा। किसी मनुष्य को भी हम रिजेक्ट करने लगे वो हमारे पास थोड़ा ही आएगा, इग्नोर करने लगे आएगा ही नहीं, कि ये तो मुझे वैल्यू ही नहीं देते। हम भी अपने क्रोध को वैल्यू ना दें। जब हम ये मान लेते हैं क्रोध मेरा संस्कार है, क्या करूं बहुत साल हो गए क्रोध जाता ही नहीं, ये मेरा संस्कार है, तो मेरा है तो रहेगा ना फिर। मेरे को तो हम भी कहेंगे ना, रहो तुम प्यार से। और सोचो, घरों में आपको इस शांति को कायम रखना है। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। हम माताओं को विशेष शुभ भावनाएं रहती हैं, हमारा पूरा परिवार बच्चे ज्ञान में आए, भावना श्रेष्ठ है, परंतु क्या ये हमारे हाथ में है? माताएं मेरे पास आती है ना, बहुत श्रेष्ठ भावना, इसमें कोई गलत नहीं है, मेरा पति भी ज्ञान में आ जाए तो कितना अच्छा हो जाए, तुम्हें सहयोग देता है पूरा, तुम कहीं भी जाओ पर मैं अभी नहीं जाऊंगा, हैं? ऐसे सबका होता है, लेकिन एक तो होता है कि संबंधों में कोई दूसरे को डिस्टर्ब करे, धारणाओं में परेशानी करे तो सोचते हैं, लेकिन ये है कि शुभ भावना सब ज्ञान में आए, अच्छी भावना है, परंतु इसमें हमारा तो अधिकार नहीं है ना। हम उन्हें धीरे धीरे ज्ञान दें और एक काम और करें, एक चीज पे और ध्यान दें, अपने घरों में संबंधों में ज्यादा ज्ञान न सुनाएं। कई तो लगे ही रहते हैं दूसरों के पीछे, सारा ज्ञान सुना देंगे। हमारे यहाँ भी करते हैं लोग, कोई आया अब सोचते हैं दोबारा तो आएगा नहीं, फाइनल मन में बैठा के रखते हैं, जितना ज्ञान है सारा सुना दें आज ही। अब उसको याद कितना रहेगा वो सोच लें। कई लोग तो ऐसे हैं, हमारे यहाँ भी एक दो हैं, उनसे जान छुड़ाने के लिए कुछ ना कुछ बहाना करते हैं लोग। जितना कम सुनाएंगे ज्ञान की उतनी ही वैल्यू रहेगी। बहुत समझने की ये बात है, किसको क्या सुनाना है ये हमें जानना चाहिए। सबको सब कुछ सुना देना इसकी जरूरत नहीं। एक प्रोफेसर और बहन आई आज, बड़ी प्रोफेसर है, एमटेक के स्टूडेंट्स को पढ़ा, एमटेक बहुत बड़ी डिग्री है, बीटेक फाइनल ईयर और एमटेक। तो मेरे से पूछा कि मुझे अब, क्योंकि बड़े बच्चे हैं कई तो बीए बीटेक करके 10 साल नौकरी करके फिर एमटेक करने आते हैं, 20 साल नौकरी करके फिर करने आते हैं, तो बड़े बच्चे हैं, कहा मेरी अब इच्छा है, अब उन्हें ज्ञान मुझे देना है। तो मेरे से पूछा क्या दूं। अब यहाँ ये एक बहुत ही गहरी बात होती है कि हम दूसरों को ज्ञान क्या दें। बैठाना है, आगे ले आओ, यहाँ ले आओ, यहाँ जाओ। तो मैंने उनको कहा आप सबसे पहला उन्हें ज्ञान देना, थोड़ा थोड़ा एकाग्रता कैसे बढ़े, थोड़ा थोड़ा ज्ञान। दूसरा, कुछ मॉरल वैल्यूज हैं विद्यार्थियों के लिए, कुछ सद्गुण हैं, वो जीवन में कैसे आए, बहुत जरूरी है। बीटेक कर लिया, एक अच्छी जॉब मिल गई, लेकिन रास्ते में विघ्न आने लगे, समस्याएं आने लगी, लोगों का गलत व्यवहार होने लगा, उसमें क्या करूं। तो हम दूसरों को जब ज्ञान देते हैं तो हमें ये जानकर ज्ञान देना चाहिए दूसरे को किस ज्ञान की जरूरत है। हम जो देंगे वो नहीं, जो उन्हें चाहिए वो देंगे। तो ये हमें सीखना है तो घरों में शांति रहेगी। अब तीसरी प्रॉपर्टी बाबा की, पवित्रता। सुनाऊं इसमें कुछ आपको, निराश उदास तो नहीं होंगे, क्योंकि जब हम पवित्रता पे बोलते हैं तो कईयों के चेहरे थोड़े डाउन हो जाते हैं, चेहरों के हाव भाव, सोचते हैं हम तो ये कर नहीं सकते, हमारी तो स्थिति ऐसी बन नहीं सकती। बन नहीं सकती या बन सकती है, अधिकार है। इस शब्द को आज अंडरलाइन करें और इस पे गहन चिंतन करना। जो कुछ बाबा का है वो सब हमारा है, वो पवित्रता का सागर है, वो पतित पावन है, तो हम भी परम पवित्र हैं। वो सर्वशक्तिवान है तो हम भी मास्टर सर्वशक्तिवान है। माया को जीतने की शक्ति हमारे पास है, इसको अपने चिंतन में लाएं सभी। कि चिंतन नहीं होता तो छोटी मोटी माया डर पैदा कर देती है, हरा देती है, लेकिन इन दोनों चीजों को चिंतन में रखें तो स्मृति रहेगी। कि चीज को हम बहुत चिंतन करते हैं वो याद रहता है ना, चिंतन नहीं करते तो भूल जाता है। तो हम इन दो चीजों का चिंतन करें। बाबा ने दो शब्द बोले प्योरिटी के लिए, रॉयल्टी और पर्सनालिटी। सबसे बड़ी रॉयल्टी, सबसे बड़ा व्यक्तित्व, हिंदी में व्यक्तित्व कहते हैं। इससे और सिंपल शब्द कोई नहीं है, माताएं समझ लें। देखो कोई व्यक्ति देखते ही हमें आकर्षक लगता है, बहुत तेज होता है कई व्यक्तियों में, इसको व्यक्तित्व कहते हैं, पर्सनालिटी कहते हैं। हमारे पास सबसे ज्यादा तेज है प्योरिटी का, ये हमारा सबसे बड़ा व्यक्तित्व है, हमारी सबसे बड़ी पर्सनालिटी है। बाबा की बहुत मूल्यां हैं, सो तो होंगी जरूर प्योरिटी पर। संसार के लोग जिसे कठिन मानते हैं, बाबा ने आकर वो सब सहज कर दिया। लोग सोचते थे गृहस्थ में रहते हुए प्योरिटी अपनाई नहीं जा सकती, बाबा ने सरल कर दिया। लेकिन सरल उसके लिए जो बनना चाहे, जो बनना ना चाहे उनके लिए कठिन। मैं एक चीज और कह दूं पहले ही आपको, पवित्र बनना एक बात है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है पवित्रता को अपनी ताकत बना देना, बल बना देना। प्योरिटी बहुत बड़ा बल है। वैज्ञानिकों को एक बहुत अच्छा काम दिया गया, मैंने यहाँ क्लास में कई बार सुनाई है ये बात, कि जब प्राकृतिक प्रकोप होते हैं तो जो होली प्लेसेस हैं, तीर्थ मंदिर मस्जिद तीर्थ, वो सुरक्षित रहते हैं। क्यों? तो उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि इनसे जो पवित्र तरंगे फैलती हैं वो विनाश की तरंगों को रोक देती हैं। देखो उत्तराखंड में केदारनाथ बद्रीनाथ बहुत बड़ा तूफान हुआ था ना, बहुत बड़ा बारिश, शायद बादल फट गया था, सब बह रहे थे, पता ही नहीं कितने हजारों लोग बह गए होंगे, और मंदिर कैसे सुरक्षित रहा पता? एक बहुत बड़ा पत्थर रिडकते रिडकते आ गया वहां, रुक गया और उससे पानी का बहाव दूसरी ओर होने लगा, नहीं तो पानी मंदिर को भी बहा के ले जाता। तो जहां पवित्र आत्माएं होंगी, ये बात सबको याद रखनी है, विनाश काल में जहां तक उनकी तरंगे फैलेंगी वहां तक के लोग सुरक्षित रहेंगे। तो हमें अपनी पवित्रता को अपना बल बनाना है। अब बल क्यों नहीं बनती कईयों की प्योरिटी? मान लो कोई पवित्र आत्मा पर चिंतन में रहती है, तेरे मेरे में रहती है, कर्मेंद्रियों के रसों में रहती है, खास एक रस दो रस, कौन सा रस? खाने पीने का, स्वाद इंद्रिय का रस, जीभ का रस, और दूसरा कानों का रस। ये दो बड़े खतरनाक हैं। कानों से अगर व्यर्थ सुनेंगे तो व्यर्थ संकल्प चलेंगे, पर चिंतन होगा व्यर्थ संकल्प चलेंगे, ईर्ष्या द्वेष तेरा मेरा होगा तो व्यर्थ संकल्प चलेंगे। तो प्योरिटी बल नहीं रहेगी। पवित्रता की जो शक्ति है व्यर्थ के संकल्पों में बहकर नष्ट हो गई। तो पवित्रता तो रहेगी, लेकिन जैसे छोटा सा बल्ब होता है ना, उसकी लाइट कमरे में इतनी फैलती है कि सबको लगता है अंधेरा नहीं है, पर अगर पढ़ना हो तो वो लाइट काम नहीं करेगी। तो हमें अपनी प्योरिटी को संसार के लिए बल बनाना है। प्योरिटी ही संसार को निष्पाप करेगी। थोड़ी आत्माएं भी जब बहुत पवित्र हो जाएंगी, चंद्रमा कितने होते हैं आकाश में, पूर्णिमा का चंद्रमा एक ही होता है ना, कितना आकर्षक, अंधकार को हर लेता है, एक चंद्रमा, सूरज की बात नहीं करें, चंद्रमा। थोड़ी भी आत्माएं बहुत अच्छी पवित्रता के बल से संपन्न होंगी तो संसार में पाप नहीं रहेगा, निष्पाप होने लगेंगे लोग, पुण्य आत्माएं बनने लगेंगे और ये विकार समाप्त होंगे। बाबा की दो बातें मैंने यहाँ सुनाई हैं, फिर सुने आप, साकार मूल्यों से है। इस धरा पर एक दिन आध्यात्मिक क्रांति आ जाएगी, दूसरा शब्द भी ऐसा ही, प्योरिटी की क्रांति आ जाएगी। इसमें सभी लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि इंग्लिश के शब्द थे तो बहुतों को तो पता ही नहीं चला क्या कह दिया बाबा ने, सुनाने वालों को भी नहीं पता था क्या है ये। प्योरिटी का रिवोल्यूशन हो जाएगा, रिवोल्यूशन माना क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति हो जाएगी, रिवोल्यूशन। जैसे इलेक्शन होते हैं, अब कर्नाटक में इलेक्शन हुआ, सबके बोल में, सोच में, टीवी में, अखबारों में, रेडियो में क्या था, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी सरकार बने, क्या होगा, हमें लेना देना कुछ नहीं, लेकिन सोच सब रहे थे। इसको कहते हैं क्रांति। तो प्योरिटी की क्रांति आ जाएगी, हर आत्मा, सभी धर्मों की प्रत्येक आत्मा पवित्र बनना चाहेगी, अंडरलाइन करें, चाहेगी, और उसका आधार होगा हमारे प्योर वाइब्रेशंस, पल होगा उनमें बहुत। इसलिए 108 आत्माएं जिस दिन तैयार हो जाएंगी उस दिन रिवोल्यूशन हो जाएगा, क्रांति आ जाएगी। तो हमें प्योरिटी पर बहुत ध्यान देना है, यही रॉयल्टी है। हमारे संस्कारों में रॉयल्टी आ जाती है, बोल में रॉयल्टी आ जाती है, चलने में रॉयल्टी आ जाती है, खान पान, खाने का तरीका, कर्म करने का तरीका, सब अलौकिक हो जाते हैं। तो हमें इस पर बहुत ध्यान देना है, इस सब्जेक्ट में डीले नहीं होना है, ये परमात्म संपदा है और हम उसके अधिकारी हैं। ठीक है, भाइयों से पूछते हैं, पसंद है ना ये बात, इसमें डीले नहीं होना है। कौन आजकल ढीला कर रहा है प्योरिटी को, कौन सी माया, मोबाइल, नेट, नेट का दूसरा अर्थ भी होता है ना, जाल, ये जंजाल है, बातों के जीवन को खराब कर गया है ये जंजाल। माताओं को तो पता ही नहीं, अच्छा है नहीं पता हो, जैसे साकार में बाबा कहते थे ना, तुम पढ़े लिखे नहीं है, बहुत अच्छा है, अनेक तरह के गंदगी किचरा बुद्धि में है ही नहीं। अब भी यही कहेंगे जो नेट के जाल से मुक्त है वही बुद्धिमान है, नहीं तो अच्छे अच्छे लोग फंस गए हैं उस चक्रव्यूह में, एक बार गंदी फिल्में देखने की आदत पड़ गई तो पड़ गई, फिर तो माँ डांटे या बाप पिटाई करे, देखना है पढ़ाई हो या ना हो, पढ़ाई से कुछ लेना देना नहीं, ये युवा पीढ़ी का हाल होता जा रहा है। इसलिए इससे अपने को बचाना है, मोबाइल आदि का यूज उतना ही जो फायदेमंद है, नहीं तो व्हाट्सएप पे घंटों लगे रहते हैं लोग, खुद पढ़ना है, फिर आगे भेजना है, कुछ डिलीट करना है, घंटों लगाएंगे इसमें। अब उस घंटे को अगर हम अच्छी साधनाओं में लगा दें, मोबाइल में अनेक बातें तो झूठी आती हैं, अनेक झूठी, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अनेक झूठी चीजें आ रही हैं, इनसे बचना है। समाचार भी बहुत झूठे आते हैं, टीवी वाले बहुत झूठे समाचार देते रहते हैं, सब सच्चा नहीं होता है, बढ़ा चढ़ा के बहुत देते हैं। इसलिए बाबा क्या करेगा जब विनाश होगा, बताओ बाबा क्या करेगा, ड्रामा में है, ये सब फेल हो जाएंगी चीजें, और बाबा ने कहा हुआ है कि बाबा अपने बच्चों को ऐसा बिजी रखेगा कि विनाश कब हो गया पता ही नहीं चलने देगा, साक्षात्कार में मस्त रखेगा कि टीवी आदि चलेंगी नहीं न फोन चलेगा। सोच लो जो फोन के अधीन है, फोन चलेगा ही नहीं, समाचार मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि समाचार मिलेंगे तो ज्यादा दुखी होंगे, इसलिए समाचार सब बंद, अखबार सब बंद हो जाएंगे। छोटी सी कल्पना करो, एक आप भूकंप होने लगे, रेलवे लाइन 10 जगह से टूट गई, एक एक किलोमीटर की टूट गई, गड्ढे पड़ गए, गड्ढे इतने गहरे हैं, अब रोड होने लगेगा तो सरकारें भी सोचेंगे अब क्या करें इसको, छोड़ो, सड़कें टूट गई हैं तो माल इधर से उधर जाएगा ही नहीं, ट्रांसपोर्ट सारा बंद, लूट हो जाएगी ना, लूट मार, जब कुछ मिलेगा नहीं तो ट्रक जो रास्ते में खड़े हैं सब लूट लिए जाएंगे, ट्रेन लूट ली जाएंगी, ये सब होने जा रहा है। तो अखबार आएंगे कहां से, आएंगे ही नहीं, छपने की इंक भी नहीं होगी, कागज भी नहीं मिलेंगे। इसलिए अभी से ऐसी तैयारी करें कि जो कुछ हमारे पास हो उसमें संतुष्ट। दाल बची है घर में, आटा है, दाल रोटी खाओ बस मस्त रहो। मिर्ची नहीं है, लाल मिर्च खत्म हो गई, लाल मिर्च के बिना खाना खाओ मस्त रहो, ऐसी आदत बनानी पड़ेगी। हर हाल में संतुष्ट, नहीं तो सोचते ही रहेंगे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ ये क्या हो गया, बाबा मदद नहीं करता है, बाबा मदद नहीं करता है, ये आवाज चारों ओर से आएगी। करता है बाबा मदद या नहीं, पर आप पक्का कर दो अभी से, बहुत लोग बोलेंगे बाबा मदद नहीं करता। अब मैं एक उदाहरण देता हूं इसके लिए, आप अपने अभी बोलते हैं ना उसी का सुना रहा हूं मैं, आज ही मुझे 2-3 बोल रहे और काफी परेशान हो गई वो बहनें, बाबा मदद नहीं करता। एक बहन तो वो सरेंडर नहीं है, कहा मैं तो बाबा से रूस गई, जब तक वो मेरा ये काम नहीं करेगा मैं जाऊंगी नहीं सेंटर, मदद नहीं करता बाबा, हमने बाबा के लिए क्या क्या किया, बाबा कुछ नहीं करता हमारे लिए, बाबा से नाराज। मुझे याद आ रहा था आज कि जब बाबा कहता था बाप से भी संतुष्ट, हम सोचते थे बाबा से कौन असंतुष्ट होगा भाई, लेकिन अब पता चलता है कैसे भी नटखट बच्चे हैं जो प्यार के सागर से प्यार है ना वे रूठ जाते हैं, अब मनाने तो आना पड़ेगा उसको, आएगा या नहीं। तो हम सभी एक उदाहरण ले लें, अब आप अपने बच्चे को आइसक्रीम बहुत खिलाते हैं, बच्चा भी आइसक्रीम बहुत प्यार से खाता है, उसे बुखार हो गया है, उसका गला खराब है, आप उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, रास्ते में वही आइसक्रीम की दुकान आ गई है जहाँ रोज खिलाया जाता है, अब वो जिद कर रहा है मम्मी आइसक्रीम, बोलो कौन कौन खिलाएंगी, क्यों नहीं करती आप अपने बच्चे को। आइसक्रीम न खिलाना ही मदद है या नहीं, आइसक्रीम खिला देंगे बुखार बढ़ेगा, गला और बंद हो जाएगा, कफ जम जाएगा, मुश्किल हो जाएगी, तो आइसक्रीम न खिलाना ही मदद है। तो बाबा जानता है क्या खिलाऊं क्या नहीं, हमारी बुद्धि लिमिटेड है, सीमित है, हम तो ये सोचते हैं ना बाबा यहाँ हमें मदद नहीं कर रहा है, लेकिन वो कुछ और कर रहा होगा हमारे लिए। हम तो इतना ही चाहते हैं ना कि भाई ये मकान हमें बनाना है, जमीन नहीं मिल रही है, ये जमीन मिल जाए, बाबा मदद नहीं कर रहा। आज वो एक बहन यही कह रही थी, बहुत योग किया, भोग लगाए, बहुत योग किया अमृत वेले उठ के, मैंने कहा यही तो मदद थी कि अमृत वेले उठ के योग किया, नहीं तो सोते रहते, मदद नहीं थी, यही तो मदद थी। कहा पर बाबा को मदद तो करनी चाहिए थी, जमीन लेकर मकान बनाना है। क्या कर रहा है बाबा? वो जानता है कि यहाँ मकान बनाने से अच्छा नहीं होगा, ये कष्ट पाएंगे, इस जगह पर बैड एनर्जी है, ये भूतों की जगह है, उसको पता है ये मदद है या नहीं, क्योंकि बहुत जगह हो गया, मैं उस अनुभव से जानता हूँ। मकान बन गए, सेंट्रोकेप बन गए, वहां थे भूत, सेवा होने ही नहीं देते। अब वो 1 करोड़ खर्च करके मकान बन गया, अब कैसे उसे छोड़ें, किराए पे कोई लेगा नहीं। तो बाबा तो मदद करता ही है, बिल्कुल निकाल दे बुद्धि से कि बाबा मदद नहीं कर रहा है, उसका मदद करने का तरीका भी परफेक्ट है, क्योंकि वो जानता है उसे कहां क्या करना है। हम थोड़ा डायरेक्शन देंगे, यही मदद करो, वो उसे पता है हमारा कल्याण किसमें है, क्या होने पर हम बहुत आगे बढ़ेंगे, क्या होने पर हमारा भविष्य निर्विघ्न होगा, सुखदायी होगा। तो सभी इन संकल्पों से अपने को मुक्त रखें। आने वाले समय में हम कभी भी ये नहीं कहेंगे बाबा हमें मदद नहीं करता, विनाश में खास वो मदद करेगा। ओम शांति।
बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान।